मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 7 दिसंबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आपने कल का लाइफ मैनेजमेंट सुना हो तो इनफैक्ट कल का मेरा लाइफ मैनेजमेंट मूलतः पेरेंट्स को एड्रेस था, अभिभावकों को संबोधित था और मुझे ऐसा लगा कि कुछ और जरूरी बातें जो उससे हटकर हैं कुछ और की जानी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि आज का भी मेरा जो लाइफ मैनेजमेंट है इनफैक्ट मूलभूत रूप से पेरेंट्स को ही एड्रेस है, लेकिन इनमें से बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आप अपने ऊपर भी लागू कर सकते हैं, आप भी अपना सकते हैं, इससे कुछ ना कुछ तो बेहतर ही होगा। लेकिन मैं इस बात को क्लियर कर दूं, चूंकि मुझे मालूम है जैसा कि आप सभी बताते हैं जो यंग स्टूडेंट्स हैं, आप जो ईमेल लिखते हैं या जो क्लासेस में आते हैं तो आप ही सब बताते हैं कि आपके बड़े भाई भी सुनते हैं, पापा भी सुनते हैं, मम्मी दादी नानी मतलब ये सब भी इस लाइफ मैनेजमेंट को सुनते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनसे भी सीधे मुखातिब होकर के बात करूं और आप नौजवान साथियों से तो मैं लगातार रोजाना ही मुखातिब होता रहता हूं। तो मित्रों, आज मैं पेरेंट्स के लिए स्पेशली 3 जरूरी बातें करना चाहूंगा। 3 जरूरी बातें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी पेरेंट्स हूं और हम लोग भी अब उस स्थिति में आ गए हैं जब बहुत सी चीजों का अनुभव पेरेंट्स के रूप में कर रहे हैं। देखिए, पहले तो बच्चों के रूप में करते हैं, इसके बाद फिर एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में करते हैं, फिर जब पेरेंट्स आप बन जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी एकदम अलग तरीके की हो जाती है, पूरी की पूरी स्थितियां बदल जाती हैं। चाहे हम जिम्मेदारी निभा भी क्यों न रहे हो लेकिन स्थितियां बदल जाती हैं और मुझे लगता है कि अगर हम उन बदली हुई स्थितियों के अनुकूल अपने आप को नहीं बदलते हैं तो फिर मामला गड़बड़ होने लगता है, बेकार के टकराव होने लगेंगे, तनाव होने लगेंगे, दरारें पैदा हो जाएंगी। सच पूछे तो बच्चों के बड़े हो जाने के बाद पेरेंट्स का जीवन अपेक्षाकृत जो अधिक शांत रहना होना चाहिए और ज्यादा अशांति से भर जाता है। इसके लिए हम क्या करें, कैसे वो शांति बनी रहे। चलिए हम शांति अशांति की बात नहीं भी करें तो कैसे हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकें। और केवल हमारे ही जीवन को अच्छे तरीके से गुजारने की बात नहीं है बल्कि इसमें यह भी छुपा हुआ है कि किस तरीके से हमारे जो बच्चे हैं, जब मैं बच्चे की बात कह रहा हूं तो फ्रेंड्स इसमें आप बेटा बेटी बहू दामाद सबको लेकर चलें, यहां तक कि उनके बच्चे उनको भी लेकर चलें, यानी कि हमारी भी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरे और साथ ही साथ हमारे बच्चे भी खुश रहें। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स के लिए तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी खुशी इसी बात की होती है कि उनके बच्चे खुश हैं और ये सब आप महसूस भी करते होंगे। चाहे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से कितना भी नाराज क्यों ना हो, झगड़े हो सकते हैं, नाराजगी हो सकती है, बातचीत बंद हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसके बच्चे दुखी होंगे, परेशान होंगे तो मां बाप के मन में परेशानी जरूर पैदा होगी, मां बाप भी दुखी होंगे चाहे उनसे बोलचाल बंद ही क्यों ना हो। ये एक अद्भुत बात है और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी और अच्छी बात भी है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्या करें, तो मैंने उसके लिए खासकर 3 बातें चुनी हैं। पहला तो मुझे ये लगता है कि होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी उम्र अधिक होती जाती है, ये बहुत ही स्वाभाविक है कि शारीरिक रूप से हम कमजोर पड़ने लगते हैं, हमारा इम्यून पावर कमजोर हो जाता है, कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, शरीर के सारे जो हमारे यंत्र कह लीजिए वो भी पुराने पड़ जाते हैं। तो अब सेकेंड हैंड थर्ड हैंड गाड़ी आखिर में न्यू मॉडल का तो मुकाबला नहीं कर सकती, यानी कि हम में बीमार पड़ने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं, बीमारी यानी कि हमारा जो हेल्थ है वो डेटोरिएट होने लगता है, स्वास्थ्य गिरने लगता है। मित्र, मुझे लगता है कि हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य है, और ये केवल अपने ही प्रति नहीं बल्कि मुझे लगता है कि बच्चों के प्रति भी जो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, बल्कि यूं कहें कि जिसे हमें धर्म मानकर चलना चाहिए, वह यह कि हम अपने हेल्थ को हर संभव अच्छा रखने की कोशिश करें। देखिए, जो बीमारियां हैं वो हैं, कुछ तो बीमारियां बहुत पहले से लग चुकी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी जीवन शैली के द्वारा खान पान पर नियंत्रण करके इन पर बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात कि हम अपनी अगर एक्टिविटीज बनाए रखते हैं, अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं, खुश रखते हैं, तो डेफिनेटली इनका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे टोटल हेल्थ पर पड़ता है। यानी कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो हेल्थ है वो ज्यादा खराब ना होने पाए। नेचुरली देखिए हमें वीकनेसेस आएंगी, कमजोरियां आएंगी, तो ठीक है थोड़ी बहुत कमजोरी आ जाएगी। अब हमें उतनी ज्यादा एक्टिव होकर के काम करने की जरूरत भी नहीं है, जितने की जवानी के समय में हम भाग दौड़ कर लेते थे। अब उतने भाग दौड़ करने तो काम होगा और न बच्चे चाहेंगे कि आप उस तरह के काम करें। मुझे ये लगता है कभी कभी फ्रेंड्स कि अक्सर पुराने समय में ये कहा जाता है था कि जो हमारे बच्चे हैं वो एक बूढ़े का सहारा होते हैं, बूढ़े की लाठी होते हैं, गांव में ये कहा जाता है बुढ़ापे की ये लाठी है, यानी कि हमारा सहारा बनेंगे। इसको हम उलट करके क्यों ना करें कि ठीक है हम बूढ़े हो गए हैं लेकिन हम बच्चों की का सहारा बने। लाठी तो नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चों को लाठी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, वो इतने में सक्षम हो, इतने सक्षम हो कि उन्हें लाठी नहीं चाहिए, वो अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बजाय इसके कि हम उन्हें अपना सहारा समझें या माने या अपेक्षा करें, बेहतर होगा कि हम खुद उनका सहारा बने। क्योंकि देखिए भविष्य उनका है, जीवन उनका है, आगे उनको बढ़ना है, हमारे अधूरे जो सपने रह गए हैं उनको पूरा हमारे बच्चे करेंगे। कैसे करेंगे? वो अपनी ताकत से अपने काम में लगे हुए हैं, जरूरत के पड़ने पर अगर हम उसे उन्हें थोड़ा सा सहारा दे सके तो सोचिए कि उन्हें कितनी मदद मिल जाएगी। और ऐसा करके हम ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं, हम अपने ही सपनों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारे हैं, हमारा ही एक्सटेंशन है। और जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं माता पिता खानदान का नाम ही होता है, बच्चे केवल एकदम अपने ही नाम से नहीं जाने जाते। तो बजाय इसके कि हम उनसे सहारा पाएं, कोशिश करें कि हम उनको सहारा देने वाले बने। और इसके लिए जो हमारे हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए होता क्या है, अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो चलिए बच्चे तो परेशान होंगे ही, है ना, हमारी इलाज करवा रहे हैं, हमको लेकर के चिंतित हैं, दवाइयों में पैसा लग रहा है, उनके काम का नुकसान हो रहा है, उनको अपने जीवन का जो एंजॉयमेंट का पीरियड था हमारी बीमारी में लगा रहे हैं, ये तो वो कर ही रहे हैं, ये तो बच्चों की परेशानी होगी। क्या ये कहना गलत होगा कि हमको भी तो परेशानी हो रही, हम कौन सा बीमार पड़ करके खुश हो रहे हैं, हमारी भी मानसिकता बड़ी अवसाद की हो गई है, निराश रह रहे हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, अपनी बीमारी को लेकर के चिंतित हैं। अब इस समय तो और ज्यादा चिंता हो जाती है कि भैया कहीं और ज्यादा बीमार न पड़ जाए, पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो इस आशंका को भी तो हम झेल रहे हैं, तो ये दोनों के लिए परेशानी की बात है। तो मित्रों अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे अपने हेल्थ का, खान पान जीवन शैली का, तो बट नेचुरल है कि हमारी हेल्थ अच्छी ही रहेगी। तो ये तो मित्रों हुई पहली बात। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं और वो है अपनी यूटिलिटी को बनाए रखना, अपनी उपयोगिता को बनाए रखना। यानी कि मैं अगर बूढ़ा हो गया हूं, और हालांकि आजकल कोई 60 साल से अधिक उम्र का आदमी बूढ़ा नहीं माना जाता, देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बढ़ गई है। मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, किस उम्र में बने? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के साथ तो मैंने काम ही किया जब वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति थे, 70 से ऊपर की उनकी उम्र थी और कितने एक्टिव थे, मतलब हम लोग थक जाते थे लेकिन उनके चेहरे, उनका थकना तो सोचिए दूर की बात है, उनके चेहरे पर वो हमें थकान दिखाई तक नहीं देती थी, ना उनके आवाज में वो मायूसी दिखाई देती थी, लगे कि अब ये थक गए हैं। तो ये तो देखिए हमारे अपने ऊपर है कि हम कैसे अपनी उपयोगिता को बनाए रखते हैं। उपयोगिता को बनाए रखने का मतलब है कि बच्चों के लिए भी हमारी उपयोगिता है, बच्चे भी हमारे सोच रहे हैं कि नहीं हमारे जो पापा मम्मी हैं, हमारे जो दादा दादी हैं, हमारे लिए बहुत काम के हैं, और अगर ये नहीं रहेंगे और कहीं चले गए तो हमको ये परेशानी हो जाएगी, ये परेशानी हो जाएगी, उनके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए। दूसरी यह है कि हम अपने समाज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करें, क्योंकि अब हमने अपने परिवार के लिए तो कर लिया है जो करना था, वो अब थमा दिया, अपने बच्चों को थमा दिया कि भैया परिवार को अब तुम देखो करो, हम तुम्हारी थोड़ी थोड़ी जो भी मदद हो सकेगी वो करेंगे, लेकिन अब समाज से जो हमने लिया है उसके लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए। तो ठीक है थोड़ा सा समय हम समाज से निकालें, जरूरी नहीं कि हम नौकरी कर रहे थे अब रिटायर हो गए तो ये लग रहा है कि साहब अब हम करें क्या, करने को बहुत कुछ होता है, बशर्ते कि हम करना चाहें और थोड़ी सी आंखें खोल करके इधर उधर देखें, बहुत है करने को। आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, छोटे बच्चों को इकट्ठा करके पार्क में घुमाने ले जा सकते हैं, उन्हें कहानी किससे सुना सकते हैं, एक काम है, हजारों काम है, कोई भी चुन लीजिए और अपने उस काम में लग जाइए। हमारी अपनी उपयोगिता बनी रहनी चाहिए, उस युग को भूल जाइए कि ठीक है साहब अब हम खाट पर बैठ करके पलंग तोड़ेंगे या खाटी तोड़ेंगे, जो भी है। यह मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक मानसिकता है। यह अपने आप को फालतू के नष्ट करने की मानसिकता है, बल्कि स्लो सुसाइड करना है, धीरे धीरे आत्महत्या करने जैसा ही है। अगर हम पूरी तरह से अपने को निश्चिंत करके और काम छोड़ छाड़ करके बैठ जाते हैं जबकि हमारी हेल्थ अच्छी है। अब देखिए, जब स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा तो फिर तो लाचारी है, फिर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो आखिरी पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस का मामला मतलब है कि हम घर के मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करें। कम से कम शब्द भी मैं वापस लेता हूं, हस्तक्षेप ना ही करें। बच्चे जाने उनको क्या करना है, कैसे करना है। अगर वो आपसे सलाह लेते हैं, हमसे कुछ पूछने आते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, तो हम अपने अनुभव के आधार पर उनको सलाह दे दें। लेकिन ये न माने कि हमारा सलाह हमारा आदेश है, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। हमने अपनी एडवाइस दे दी, अब वो एडवाइस उनको कितनी सही लगी, कितनी गलत लगी, उसमें से कितना ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब देखिए हमने सलाह दी है लेकिन उसने मानी नहीं, और अगली बार फिर सलाह लेने आ गए तो हम अब उनको ताना दे रहे हैं कि तुम सलाह लेने आ जाते हो, मानते मानते तो कुछ हो नहीं, तो क्यों सलाह लेने आते हो। नॉट एट ऑल, सलाह आदेश नहीं है, आप कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। मैं उसको लग रहा है कि मेरे पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी इस बारे में अनुभवी हो सकते हैं, मैं जरा सा उनसे पूछ लेता हूं। आपसे उन्होंने पूछ लिया, उनको एक कंटेंट मिल गया, सोचने समझने का एक आधार मिल गया, एंगल मिल गया कि ठीक है इसको इस तरीके से भी सोचना चाहिए। उन्होंने सोचा समझा, लेकिन उनको लगा कि नहीं 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 ये ठीक नहीं है, ऐसे करना चाहिए, तो उन्होंने बात नहीं मानी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, नॉट एट ऑल। एक तरीके से यूं कह लीजिए कि उन्होंने यदि पूछा तो पूछकर एक प्रकार से सम्मान दिया है, तो उनको फ्री छोड़ दीजिए। देखिए, अगर फ्री छोड़ेंगे तभी वो सीखेंगे भी। अगर हम हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे तो उनको दिक्कत होगी और इसके बाद फिर से वो तनाव की स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि समय आगे बढ़ चुका है। हमको भी जब हम जवान थे, युवा थे, तो बहुत ज्यादा हस्तक्षेप पसंद नहीं आते थे। आपको ध्यान याद करने की कोशिश कीजिए अपने दिन, आप भी चाहते थे कि यार मुझे अपने ढंग से काम करने दिया जाए। उसी तरह से अगर हमारे बच्चे चाह रहे हैं कि हमें अपने ढंग से काम करने दिया जाए, तो क्या गलत चाह रहे हैं? तो हम अपने ही हिसाब से हर समय क्यों सोचते रहे? उस समय भी हम अपने हिसाब से सोचते थे, अभी भी हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं, तो मित्रों ये तो गड़बड़ है। तो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी लेकर चलना चाहिए, कि अहस्तक्षेप की नीति। और आप देखिए कि ये तीन चीजें करके देखिए, पहला है हेल्थ अपनी अच्छी रखिए, दूसरा यह है कि अपनी उपयोगिता बनाए रखिए, यानी कि काम करते रहिए, काम करते रहिए, लोग आपको चाहें, आपकी जरूरत महसूस करें, और तीसरा है अहस्तक्षेप, नो इंटरफेरेंस। मजा आ जाएगा जीवन में। आप मित्रों मेरे बात पर थोड़ा सा विश्वास करके एक बार इसको शुरू करें, मजा आए तो कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं मजा आया, अच्छा रिजल्ट नहीं मिले तो छोड़ दीजिएगा, उसमें क्या है। तो दोस्तों, अब आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब आपसे अनुमति चाहूंगा, नमस्कार।